एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जो आजकल हर तरह चर्चा में है और हमारी जिंदगी को बदल रहा है।
हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये विषय है मशीन लर्निंग। हम बात कर रहे हैं एथन अल्पाइदिन की किताब मशीन लर्निंग की।
अच्छा, हाँ,
ये MIT प्रेस की जो जानी मानी एसेंशियल नॉलेज सीरीज है ना, उसका हिस्सा है ये सीरीज। मतलब बड़े और थोड़े मुश्किल विषयों को कम शब्दों में आसानी से समझाने के लिए जानी जाती है।
और मशीन लर्निंग यानी ML आज इतना जरूरी क्यों हो गया है? सोचिए जरा, हमारे फोन पर जो सुझाव आते हैं,
हाँ,
ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त जो चीजें दिखती हैं, यहाँ तक कि मेडिकल साइंस में जो नई नई खोजें हो रही हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ML का हाथ है।
सही बात है। तो ये सिर्फ कंप्यूटर विज्ञानियों के लिए नहीं, हम सबके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये चीज है क्या।
बिल्कुल। और इस सफर पर हमारा गाइड कौन है? एथम अल्पाइदीन।
हाँ,
इस्तांबुल की बोआसिची यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है और स्विट्जरलैंड के मशहूर EPFL से PhD की है इन्होंने। मतलब इस फील्ड के काफी जाने माने नाम है।
हाँ, और मैंने सुना है इनकी एक टेक्स्ट बुक भी है, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। वो तो दुनिया भर में चलती है।
हाँ बिल्कुल, वो तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है कई जगह, लेकिन इस किताब की, मतलब ये एसेंशियल नॉलेज वाली किताब की खासियत ये है कि ये सिर्फ अकादमिक नहीं है। अल्पाइदीन है तो प्रोफेसर पर कमाल के शिक्षक भी हैं।
अच्छा, कैसे?
वो मुश्किल आइडियाज को ना बहुत साफ और आसान तरीके से समझाते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई जंगल का एक्सपर्ट आपको पूरा जंगल भी दिखाए और साथ में जो जरूरी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में भी बताए।
वाह।
हाँ, वह तकनीकी गहराई और आम पाठक की समझ के बीच एक एक पुल बनाते हैं। ये किताब किसी विषय का सरलीकरण नहीं है, बल्कि एक विशेषज्ञ आपको उसका सार बता रहा है।
समझ गया। तो इस किताब का मकसद या गोल क्या है?
मकसद काफी साफ है। मशीन लर्निंग जैसी जो ये जबरदस्त तकनीक है, उसे आम लोगों, स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हों, या बस कोई भी जो जानना चाहता है, उनके लिए समझना आसान बनाना।
तो ये कोई भारी भरकम टेक्निकल मैनुअल नहीं है?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये एक तरह का वैचारिक नक्शा है जो हमें इस दुनिया के जरूरी मोड़ और रास्ते दिखाता है, गाइड की तरह।
और किताब का सबसे बड़ा आइडिया क्या है, मतलब कोर मैसेज?
कोर मैसेज ये है कि कंप्यूटिंग में एक बुनियादी बदलाव आ रहा है।
बहुत बड़ा शिफ्ट।
कैसा बदलाव?
पहले हम कंप्यूटर को नियम बताते थे, है ना, कोड लिखते थे कि अगर ये हो तो वो करो। अब हम ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो डेटा देखकर खुद सीखते हैं।
अच्छा, मशीन लर्निंग इसी नए दौर की बुनियाद है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सोचने का एक नया ढंग है, एक नया पैराडाइम।
तो ये किताब हमें इसी बदलाव की कहानी सुनाती है।
बिल्कुल, शुरुआत होती है ये समझाने से कि पुराने तरीके यानी जो पारंपरिक प्रोग्रामिंग थी वो कहाँ कमजोर पड़ जाती है।
जैसे?
कोई उदाहरण?
हाँ, जैसे किताब में उदाहरण है स्पैम ईमेल पहचानने का।
अब स्पैम भेजने वाले तो रोज नए नए तरीके निकालते हैं ना।
हाँ बिल्कुल।
तो आप कितने नियम लिखेंगे? नियम लिखते लिखते थक जाएंगे और वो फिर कोई नया तरीका निकाल लेंगे।
सही बात है। या फिर चेहरों को पहचानना, अलग रोशनी, अलग एंगल, किसी ने दाढ़ी रख ली, किसी ने चश्मा पहन लिया, इसके नियम बनाना तो लगभग नामुमकिन है।
एग्जैक्टली, और यहीं पर मशीन लर्निंग आती है। ये सिस्टम को नियम रटाती नहीं बल्कि उदाहरणों से सिखाती है।
उदाहरणों से?
कैसे? हम उसे ढेर सारा डेटा देते हैं इनपुट, और उसका सही आउटपुट क्या होना चाहिए, जैसे हजारों ईमेल और उनके साथ लिखा स्पैम या नॉट स्पैम। सिस्टम इन उदाहरणों को देखकर पैटर्न ढूंढता है और खुद नियम बना लेता है।
अच्छा, और यहीं बिग डेटा का रोल आता होगा, जितना ज्यादा डेटा उतना बेहतर सीखना।
हाँ बिल्कुल, डेटा ही इसका ईंधन है और सिस्टम जो सीखकर नियम बनाता है उसे मॉडल कहते हैं। ये एक तरह का कंप्यूटेशनल रिप्रेजेंटेशन है उन पैटर्न्स का जो उसने डेटा में देखे।
दिलचस्प। तो ये सीखने के अलग अलग तरीके क्या हैं? किताब में जिक्र होगा पहला शायद सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये नाम क्यों?
हाँ, सुपरवाइज्ड लर्निंग सबसे आम तरीका है। इसे सुपरवाइज्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसे है जैसे कोई टीचर यानी सुपरवाइजर बच्चे को सिखा रहा हो हर सवाल का सही जवाब बताकर।
मतलब लेबल वाला डेटा चाहिए?
बिल्कुल, यहाँ मुख्य चीज है लेबल वाला डेटा, लेबल्ड डेटा, यानी हमारे पास जो भी उदाहरण है उनमें हर इनपुट के साथ उसका सही जवाब यानी लेबल पहले से मौजूद होता है।
ठीक है, जैसे वो ईमेल वाला उदाहरण, ईमेल और साथ में लेबल स्पैम नॉट स्पैम।
हाँ, तो ये सुपरवाइज लर्निंग करता क्या है, इसके मुख्य काम क्या है?
इसके दो मुख्य काम बताए गए हैं। पहला है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन,
हाँ। इसमें आउटपुट कोई तय कैटेगरी या वर्ग होता है, जैसे ये ईमेल स्पैम है या नहीं, दो कैटेगरी हो गई, या इस तस्वीर में बिल्ली है या कुत्ता या कुछ और।
समझ गया। और दूसरा काम?
दूसरा है रिग्रेशन। यहाँ आउटपुट कोई कैटेगरी नहीं बल्कि एक लगातार बदलने वाली संख्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू।
जैसे?
जैसे किसी इलाके में घर के साइज, लोकेशन वगैरह के आधार पर उसकी कीमत क्या होगी, या कल दिल्ली का तापमान कितना रहेगा, ये नंबर्स हैं।
अच्छा, किताब में ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्ट सेट्स की बात भी है, ये क्यों जरूरी है?
हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये मॉडल को रट्टू तोता बनने से रोकता है।
रट्टू तोता मतलब?
मतलब कि मॉडल सिर्फ देखे हुए उदाहरणों को ही ना रट ले, हमें ये देखना है कि वो सच में सीखा है या नहीं। तो हम डेटा को तीन हिस्सों में बांटते हैं।
ओके।
पहला ट्रेनिंग सेट, इस पर मॉडल असल में सीखता है, पैटर्न ढूंढता है। दूसरा वैलिडेशन सेट, इस पर हम मॉडल को बीच बीच में परखते हैं, उसकी सेटिंग्स को ट्यून करते हैं ताकि वो बेहतर परफॉर्म करें।
और तीसरा?
तीसरा टेस्ट सेट, ये बिल्कुल नया डेटा होता है जिसे मॉडल ने पहले कभी नहीं देखा। इस पर मॉडल का फाइनल इम्तिहान होता है, असली परफॉर्मेंस यहीं पता चलती है।
और यहीं पर ओवरफिटिंग का खतरा आता है ना, कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा को ज्यादा ही अच्छी से रट ले।
बिल्कुल, ओवरफिटिंग का मतलब यही है कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा को इतनी बारीकी से रट लेता है उसके शोर शराबे समेत कि वो नए अनदेखे डेटा पर अच्छा काम ही नहीं कर पाता।
तो फिर लक्ष्य क्या है?
असली लक्ष्य है जनरलाइजेशन, यानी मॉडल की वो काबिलियत कि वो नए अनदेखे डेटा पर भी सही नतीजे दे।
हाँ।
ये वो स्टूडेंट की तरह है जो सिर्फ पिछले साल के पेपर रटने के बजाय कॉन्सेप्ट समझता है, वो किसी भी नए सवाल का जवाब दे सकता है।
सही। सुपरवाइज लर्निंग के लिए कुछ तकनीकों का भी जिक्र है किताब में, जैसे डिसीजन ट्रीज।
हाँ, संक्षेप में है, डिसीजन ट्रीज फ्लो चार्ट जैसे होते हैं, समझने में काफी आसान होते हैं कि फैसला कैसे लिया जा रहा है।
और न्यूरल नेटवर्क्स?
हाँ, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ANNs, ये हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के काम करने के तरीके से प्रेरित हैं। ये ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, ज्यादा जटिल पैटर्न पकड़ सकते हैं, पर इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। यही डीप लर्निंग का आधार बनते हैं आगे जाकर।
अच्छा, तो ये हुआ सुपरवाइज लर्निंग, अब आते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग पर, इसमें क्या अलग है?
यहाँ सबसे बड़ा फर्क ये है कि हमारे पास लेबल नहीं होते, सिर्फ डेटा होता है बिना ये बताए कि सही जवाब क्या है।
अरे, तो फिर लक्ष्य क्या होता है?
लक्ष्य होता है डेटा में खुद से छिपे हुए पैटर्न या संरचना को खोजना, जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में चीजों को टटोल कर समझने की कोशिश करें कि क्या कहाँ रखा है, कौन सी चीजें एक जैसी हैं।
दिलचस्प। तो इसके मुख्य काम क्या हुए, बिना लेबल के क्या कर सकते हैं?
एक प्रमुख काम है क्लस्टरिंग, इसका मतलब है एक जैसी चीजों को पहचान कर उन्हें एक ग्रुप या क्लस्टर में डालना।
कोई उदाहरण?
सोचिए कोई ऑनलाइन स्टोर अपने ग्राहकों को उनकी खरीदारी के पैटर्न के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटता है, ये क्लस्टरिंग है। फिर वो हर ग्रुप को उनकी पसंद के हिसाब से अलग तरह के ऑफर या विज्ञापन दिखा सकता है।
अच्छा, ये तो मार्केटिंग में बहुत काम आता होगा।
हाँ बिल्कुल। और दूसरा मुख्य काम है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन।
ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, पर मतलब आसान है। मान लीजिए आपके डेटा में बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे फीचर्स या वेरिएबल्स हैं। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का काम है कि कम से कम जानकारी खोते हुए इन फीचर्स की संख्या को कम करना।
इसका फायदा?
इससे डेटा को समझना, विजुअलाइज करना और प्रोसेस करना आसान हो जाता है।
इसी से जुड़ा एक और काम है विसंगति का पता लगाना, एनोमली डिटेक्शन, यानी कुछ अजीब या अलग पहचानना।
हाँ बिल्कुल, यानी भीड़ से अलग दिखने वाली चीज को पहचानना, जैसे क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में अचानक कोई बहुत बड़ा या अजीब पैटर्न दिखे तो वो फ्रॉड हो सकता है, ये अनोमली डिटेक्शन है।
समझ गई। तो सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और तीसरा तरीका है रीइन्फोर्समेंट लर्निंग, ये तो नाम से बिल्कुल अलग लगता है।
हाँ, ये सीखने का तीसरा बड़ा पैराडाइम है, ये करके सीखने वाला तरीका है, ट्रायल एंड एरर से सीखना।
करके सीखना मतलब?
यहाँ एक एजेंट होता है, एजेंट मतलब कोई सॉफ्टवेयर या रोबोट जो फैसले ले सकता है। ये एजेंट एक वातावरण में काम करता है।
ठीक है, वो उस वातावरण में कुछ एक्शन यानी काम करता है, हर एक्शन के बाद उसे वातावरण से एक इनाम, रिवॉर्ड या सजा, पेनल्टी मिलती है।
इनाम या सजा।
हाँ, और उसका लक्ष्य होता है ऐसे एक्शंस लेना सीखना जिससे उसे भविष्य में मिलने वाला कुल इनाम ज्यादा से ज्यादा हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी पालतू जानवर को सही काम करने पर ट्रीट देकर सिखाते हैं।
अच्छा, तो इसमें जरूरी चीजें हुई एजेंट, वातावरण, उसकी स्थिति, स्टेट, उसका एक्शन और मिलने वाला इनाम। और लक्ष्य है सबसे अच्छी पॉलिसी बनाना।
सही पकड़ा। पॉलिसी मतलब एक रणनीति कि किसी भी स्थिति में कौन सा एक्शन लेना सबसे फायदेमंद रहेगा।
यहाँ एक दुविधा का भी जिक्र आता है किताब में, अन्वेषण बनाम शोषण, एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन। ये क्या है?
हाँ, ये बड़ी दिलचस्प चीज है। एजेंट को हमेशा ये तय करना होता है कि क्या वो उन एक्शंस को करे जिनसे उसे पहले इनाम मिल चुका है और जिनके बारे में वो जानता है कि ये अच्छे हैं। ये हुआ शोषण।
या फिर
वो नए अनजान एक्शन ट्राई करे ये देखने के लिए कि शायद उनसे और भी ज्यादा बड़ा इनाम मिल जाए।
ये हुआ अन्वेषण।
अच्छा, मतलब सेफ खेलना है या रिस्क लेना है।
बिल्कुल।
और सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। कम एक्सप्लोर किया तो शायद बेस्ट तरीका कभी मिले ही नहीं, ज्यादा एक्सप्लोर किया तो बेकार के एक्शन में टाइम बर्बाद हो सकता है।
इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं?
इसके क्लासिक उदाहरण हैं गेम खेलने वाले एआई, जैसे अल्फागो, जिसने खुद के खिलाफ लाखों गेम खेलकर गो खेलना सीखा, रोबोटिक्स में चलना सीखना या चीजों को पकड़ना सीखना, या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट की समस्याएं हल करना।
वाह, ये तीनों तरीके तो काफी अलग हैं एक दूसरे से। किताब में कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट्स का भी जिक्र है ना?
हाँ, संक्षेप में कुछ और जरूरी चीजों पर भी बात की गई है, जैसे बिग डेटा का जिक्र है जो कि एमएल के लिए ईंधन की तरह है। इनके बीच एक सिम्बायोटिक रिश्ता है।
और डीप लर्निंग आजकल ये बहुत सुनने में आता है।
हाँ, डीप लर्निंग का भी जिक्र है। ये मूल रूप से बहुत सारी परतों वाले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। आजकल की जो बड़ी सफलताएं हैं, जैसे आवाज पहचानना, तस्वीरें समझना, भाषानुवाद, उनके पीछे डीप लर्निंग का बड़ा हाथ है। ये बहुत ही बारीक और जटिल पैटर्न पकड़ सकते हैं।
और मॉडल एनसेम्बल?
हाँ, मॉडल एनसेम्बल्स। इसका मतलब है कि एक ही मॉडल पर निर्भर रहने के बजाय कई सारे अलग अलग मॉडलों को ट्रेन करना और फिर उनके नतीजों को मिलाकर फाइनल फैसला लेना, जैसे किसी एक एक्सपर्ट की राय लेने के बजाय कई एक्सपर्ट्स की राय लेना, अक्सर इससे ज्यादा भरोसेमंद नतीजे मिलते हैं।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद इस पूरी चर्चा से कुछ बड़े सबक या थीम्स क्या निकलते हैं? पहला तो शायद यही कि सोचने का तरीका बदल रहा है।
हाँ, बिल्कुल। पहला और सबसे बड़ा थीम है प्रतिमान बदलाव, पैराडाइम शिफ्ट। हम कंप्यूटर को सीधे नियम बताने के बजाय अब ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो डेटा से सीखते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का बिल्कुल नया तरीका है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई खाना पकाने की विधि रटने की बजाय देख देख कर और प्रयोग करके सीखे।
दूसरा बड़ा सबक, डेटा ही असली ताकत है।
डेटा इज फ्यूल, ये बात बार बार आती है। अच्छे, साफ और काम के डेटा के बिना मशीन लर्निंग कुछ नहीं कर सकती। जैसा डालोगे वैसा पाओगे वाली बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। जैसे बढ़िया खाना बनाने के लिए अच्छी ताजी सामग्री चाहिए।
तीसरा, असली परीक्षा नए डेटा पर होती है।
जनरलाइजेशन इज की। मॉडर्न ने ट्रेनिंग डेटा को कितना अच्छा रटा ये जरूरी नहीं, असली चीज है कि वो नए अनदेखे डेटा पर कितना अच्छा परफॉर्म करता है। ओवरफिटिंग से बचना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ये जिंदगी जैसा ही है, एक स्थिति में सीखी हुई बात नई स्थिति में काम आनी चाहिए, है ना?
बिल्कुल। चौथा, हर ताले की एक चाबी नहीं होती। किताब में नो फ्री लंच थ्योरम का जिक्र है। इसका मतलब है कि कोई एक मशीन लर्निंग का तरीका या एल्गोरिदम ऐसा नहीं है जो हर तरह की समस्या के लिए बेस्ट हो। आपको अपनी समस्या और अपने डेटा के हिसाब से सही टूल चुनना पड़ता है। ML एक टूलबॉक्स की तरह है जिसमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग औजार है।
पांचवा, समझ या नतीजा, इंटरप्रेटेबिलिटी वर्सेस परफॉर्मेंस। एक बड़ा ट्रेड ऑफ है। कुछ मॉडल्स जैसे डीप लर्निंग नतीजा तो कमाल के देते हैं, पर वो ये नहीं बता पाते कि वो उस नतीजे पर पहुंचे कैसे। वो ब्लैक बॉक्स जैसे होते हैं।
हाँ, जबकि कुछ मॉडल जैसे डिसीजन ट्री आसानी से समझ में आ जाते हैं कि फैसला कैसे लिया गया, पर हो सकता है वो उतने सटीक ना हो। ये संतुलन साधना बहुत जरूरी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भरोसे का सवाल हो, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस या लोन देना है या नहीं। आप जानना चाहेंगे कि फैसला क्यों लिया गया।
बिल्कुल। और छठा और शायद सबसे जरूरी, टेक्नोलॉजी और समाज, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी। मशीन लर्निंग सिर्फ कोड और गणित नहीं है, इसका हमारे समाज पर गहरा असर पड़ता है।
कैसे?
ये नौकरियां कैसे बदलेंगी, हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, क्या ये सिस्टम निष्पक्ष होंगे या उनमें भी भेदभाव होगा, इन सब नैतिक सवालों पर सोचना और सामाजिक स्तर पर गाइडलाइंस बनाना बहुत जरूरी है।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। किताब में कुछ बातें ऐसी हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं, कुछ यादगार विचार या कोट्स कह सकते हैं, हालांकि वो सीधे कोट नहीं पर आइडियाज हैं।
हाँ बिल्कुल, कोई ऐसा आइडिया जो आपको खास लगा हो?
एक तो ये कि प्रोग्रामर का काम अब सिर्फ नियम लिखना नहीं रह गया है, बल्कि अब वो सीखने की प्रक्रिया को गाइड या सुविधाजनक बनाता है। मतलब प्रोग्रामर की भूमिका बदल रही है, वो अब एक तरह से टीचर जैसा बन गया है जो कंप्यूटर को सीखने में मदद करता है, उसे सही डेटा देता है, सही माहौल बनाता है।
ये दिलचस्प है, और कोई?
दूसरा, ये सामान्यकरण वाली बात। असली सीखना रटना नहीं है, बल्कि नए हालात में सही काम करने की क्षमता है, यानी एक मशीन लर्निंग मॉडल जिसने केवल अपने ट्रेनिंग डेटा को रट लिया है वो बेकार है। असली परीक्षा सामान्यकरण है, अनदेखे डेटा पर सटीक भविष्यवाणी करने की क्षमता।
सही, रट्टू तोता मॉडल किसी काम का नहीं।
तीसरा, वो टूल किट वाली बात। सभी कामों के लिए कोई एक मास्टर एल्गोरिथम नहीं है। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग के बीच का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी समस्या हल करना चाहते हैं और आपके पास किस प्रकार का डेटा है। ये फिर से नो फ्री लंच वाली बात को पक्का करता है।
और चौथा, वो जिम्मेदारी वाली बात। जैसे जैसे ये सिस्टम हमारे जीवन में ज्यादा घुल मिल रहे हैं, ऐसे फैसले ले रहे हैं जो हम सभी को प्रभावित करते हैं, हम उन्हें सिर्फ तटस्थ ब्लैक बॉक्स मानकर नहीं चल सकते। हमें पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए और निष्पक्षता, पूर्वाग्रह और गोपनीयता जैसे नैतिक सवालों से जूझना चाहिए। ये हमारी यानी समाज की जिम्मेदारी की बात करता है।
तो ये सब जानना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, व्यक्तिगत तौर पर कैसे फर्क पड़ता है?
देखिए, सबसे पहले तो हम अपने आसपास की टेक्नोलॉजी को थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। अब शायद थोड़ा अंदाजा लगेगा कि नेटफ्लिक्स या यूट्यूब हमें वही फिल्में या वीडियो क्यों सुझाता है जो हमें पसंद आ सकती है।
हाँ, या अमेज़न हमें क्या खरीदने को कहता है।
बिल्कुल, ये सब हमारे और लाखों दूसरे लोगों के देखे या खरीदे गए सामान के डेटा से सीखे हुए पैटर्न पर आधारित है। स्पैम फिल्टर कैसे काम करता है, गूगल मैप्स को कैसे पता चलता है कि कहाँ ट्रैफिक जैम है, सीरी या एलेक्सा हमारी बात कैसे समझते हैं, इन सब में ML है।
और शायद हम ज्यादा जागरूक डिजिटल नागरिक बन सकते हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया हमें खास तरह की पोस्ट क्यों दिखा रहा है, सर्च रिजल्ट हर किसी के लिए थोड़े अलग क्यों होते हैं, हमारे डेटा का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ये हमें ऑनलाइन दुनिया को ज्यादा समझदारी से देखने और इस्तेमाल करने में मदद करता है।
और प्रोफेशनल लाइफ में इसका क्या फायदा हो सकता है? जरूरी नहीं कि हम सब टेक में हो।
नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। किसी भी फील्ड के लोग अपनी समस्याओं को ML के नजरिए से देख सकते हैं। वो सोच सकते हैं, क्या मेरी इस प्रॉब्लम में कोई पैटर्न है, क्या यहाँ कुछ भविष्यवाणी की जा सकती है, क्या मेरे पास ऐसा डेटा है जिससे मशीन सीख सकती है, ये किस तरह की समस्या है, वर्गीकरण है, रिग्रेशन है या क्लस्टरिंग है।
अच्छा, मतलब प्रॉब्लम को फ्रेम करने का एक नया तरीका मिल सकता है।
हाँ, और इससे हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। ML के नतीजों को आखिरी सच न मानकर अपनी सूझबूझ और अनुभव के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी टीम के साथ काम करते हैं जो ML इस्तेमाल करती है, तो उनकी भाषा थोड़ी समझने से, उनकी चुनौतियों जैसे डेटा की कमी, ओवरफिटिंग को जानने से आपसी तालमेल बेहतर होता है।
सामाजिक स्तर पर भी इसकी समझ जरूरी है ना? आपने पहले भी जिक्र किया था।
बहुत ज्यादा। इससे हम AI से जुड़ी खबरों और कभी कभी जो बढ़ा चढ़ा कर बातें की जाती हैं, उनको सही परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं।
और वो एल्गोरिदम बायस वाली बात, मशीनों में पूर्वाग्रह।
हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे ट्रेनिंग डेटा में ही इंसानी पूर्वाग्रह मतलब बायस मौजूद है, जैसे मान लीजिए पुरानी भर्तियों के डेटा में किसी खास वर्क को कम मौके मिले हों, तो मॉडल भी वही भेदभाव सीख लेगा और शायद उसे बढ़ा भी देगा।
ये तो बहुत गंभीर बात है, खासकर भारत जैसे विविधता भरे देश में।
बिल्कुल, इसलिए ये समझना जरूरी है। और आखिरकार ये हमें AI के भविष्य, नौकरियों पर उसका असर, इसके लिए नियम कानून बनाने की जरूरत, डेटा प्राइवेसी जैसे अहम मुद्दों पर जो सार्वजनिक बहस होती है उसमें ज्यादा समझदारी से हिस्सा लेने लायक बनाता है।
तो इस पूरी ज्ञानोगोष्ठी से, इस किताब के सार से, आपके लिए सबसे बड़ी सीख या टेकअवे क्या रहा?
मेरे लिए शायद दो चीजें
जी।
एक तो ये कि सीखने के जो तीन मुख्य तरीके बताए गए हैं
जी,
सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइन्फोर्समेंट, ये कितने बुनियादी और यूनिवर्सल हैं। ये सिर्फ मशीनों में नहीं, हम इंसानों में, जानवरों में, प्रकृति में भी कहीं ना कहीं दिखते हैं। और दूसरी बात, डेटा की गुणवत्ता पर जो जोर दिया गया है।
अच्छा,
रेलेवेंट डेटा नहीं तो सब बेकार। आपके लिए?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात है वो शक्ति और जिम्मेदारी का संतुलन। मशीन लर्निंग बहुत शक्तिशाली टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसी वजह से इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और नैतिक तरीके से करना होगा। वो ब्लैक बॉक्स वाली बात, बायस वाली बात, इन पर ध्यान देना ही होगा। और ये भी कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जैसा कई बार लगता है, ये एक लगातार चलने वाली, प्रयोगों वाली, इटरेटिव प्रक्रिया है, इसमें मेहनत लगती है।
बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में घूम रहा है, क्या मशीन लर्निंग के इन सिद्धांतों को समझने से, मतलब ये जो सीखने के अलग अलग तरीके हैं, डेटा का महत्व, जनरलाइजेशन, क्या इनसे हम अपनी जिंदगी में टेक्नोलॉजी से हटकर भी कुछ बेहतर सीख सकते हैं? क्या हम अपने अनुभवों, जो हमारा डेटा है, से बेहतर जनरलाइज करना यानी सही सबक निकालना सीख सकते हैं? सोचने वाली बात है।
हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।